अंधेरे कमरे में और छोटे से छेद से लाइट आती है, वैसे तो डस्ट पार्टिकल एक भी नहीं दिखता, लेकिन उस अंधेरे में कैसे दिखने लगते हैं, कितने सारे, कितनी बारीक बारीक कण हैं, उन सब के आश्रित जीव राशि रह सकती है, अनंत अनंत जीव राशि, अपन को नहीं दिखाई पड़ती। जब दिखने लायक शरीर बन जाता है तो अपन कहते अरे ये कहाँ से आ गई, इसलिए इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। मनुष्यों की संख्या में होने वाली वृद्धि जब अन्य जीवों की कमी से कई गुनी ज्यादा है। भैया मनुष्यों की संख्या तो 29 अंक प्रमाण है, गिन सकते हैं, गिनती के लायक है, उससे ज्यादा तो होती नहीं। ढाई द्वीप में मनुष्यों की संख्या और बाकी जीवों की संख्या का तो पार नहीं है। अपन रिलेटिवली देखें, रेशियो देखें तो कितना थोड़ा सा, जब अनंत जीव राशि इतनी पैदा होती तब एकाध मनुष्य की उत्पत्ति होती, इसलिए मनुष्य जीवन तो अभी भी रेयर है और उसकी संख्या हमेशा कम ही रहेगी। ये प्रश्न सबके मन में आता है पर उसका समाधान अपन को करना चाहिए। कोई भी व्रत नियम लेने के बाद अगर किसी कारण से छूट गया तो क्या प्रायश्चित है? प्रायश्चित यही है कि जो नियम लिया है और जिनसे लिया है उनके चरणों में पहले तो अपनी अंदर अंदर निंदा करो और फिर बाद में गुरु की साक्षी, आत्म साक्षी पूर्वक निंदा करना, गुरु साक्षी पूर्वक, जिसको अपन कन्फेशन कहते हैं, कन्फेस कर लो अपराध बोध महसूस कर रहे हैं और गुरु के सामने जाकर शुद्ध मन से आलोचना कर दी, गर्हा कर ली कि भगवान मेरे से ये दोष हो गया या कि मेरा ये व्रत छूट ही गया, फिर वे जो भी प्रायश्चित देवें मन की शुद्धि के लिए वो करना चाहिए। प्रायश्चित अपने आप से ग्रहण करने वाली चीज नहीं है, व्रत नियम जिनसे लिया है उन्हीं से, ऐसा कोई फिक्स नहीं लिखा हुआ है कि इतना इतना अपराध हो जावे तो इतना प्रायश्चित कर लेना, नहीं तो बड़ी आसान सी प्रक्रिया है, एक चीटी मर जावे तो दो माला फेर लेना, तीन फेर लेना, हो गया काम, सो दो चार मारो, बारह माला फेर लो, ऐसा होता क्या? नहीं, ऐसा थोड़ी होता, वो तो निवेदन करना पड़ेगा। जब आपके अंतरंग में ऐसा लगे कि मेरे से अपराध हुआ है तो आधा दोष तो उसी में दूर हो गया। कहते कि प्रायश्चित आधा तो निवेदन करने में ही हो गया, फिर उसके बाद मन समझाने के लिए को हो सकता, वो कह दें कि एक माला फेर लो, दो माला फेर लो, के एक आसन कर लो, ऐसा कह देंगे तो मन और प्रसन्न हो जाएगा। मन की प्रसन्नता के लिए प्रायश्चित लिया जाता है, कोई कछु कोई के लाने पनिशमेंट नहीं है ये प्रायश्चित, उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए प्रायश्चित नहीं लिया जाता। प्रायश्चित तो मन की विशुद्धता, जिससे चित्त की शुद्धि हो जावे, ऐसा अनुष्ठान कर लेने का नाम प्रायश्चित कहलाता। तो कोई अगर व्रत नियम अपन ने लिया और कारणवश छूट गया या उसमें कमी आ गई तो निवेदन कर देना चाहिए और जो भी उसका योग प्रायश्चित होगा वो दे देंगे। जो व्रत उपवास करते रहते उन्हें व्रत में, उन्हें व्रत से भी कर सकते, जो व्रत उपवास करके करते हैं उन्हें व्रत से भी कर सकते, मतलब एक आसना से कर सकते, अपनी शक्ति के अनुसार कर लेना चाहिए, उसमें क्या, ऐसा थोड़ी है कि उपवास से ही करेंगे तभी व्रत होगा, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हम एक आसना से कर लेंगे, कल के दिन हमारी सामर्थ्य आ जाएगी फिर हम उपवास से भी एक बार कर लेंगे, उसमें क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए कि खें तो हलवा खें नहीं तो भूखे रहें, रोटी खा लो चुपचाप हलवा ही खाएंगे, ऐसा थोड़ी है, रोटी खा लो फिर अभी, फिर बाद में जब हलवा बनेगा जब खा लेना, भूखे रहने से क्या फायदा, तो कुछ तो करना चाहिए। हाँ नहीं तो करेंगे तो बिल्कुल एकदम हाई फाई, वैसा नहीं। आज मैंने सुबह एक पुस्तक में पढ़ा कि कोई मुनि महाराज आहारचर्या के, ये कौन सी किताब में आपने पढ़ लिया पता नहीं भाई, मतलब उपवास इत्यादि करने में भी आत्मघात का दोष लगता है, ये सही है कि नहीं? भैया उपवास में आत्मघात का दोष लगता है ऐसा तो हमारे कहीं पढ़ने में नहीं आया। इतना अवश्य है कि अगर उपवास संक्लेश पूर्वक किया जाएगा ऐसा होगा, विवक्षा समझो, देखो जल्दी से आकुल तने करो करे, एकदम प्रश्न सुनते ही साथ अपना मन कैसा आकुल विकल सा हो जाता, जबकि धर्म ध्यान कर भी बैठी उसने प्रश्न पूछा होगा तो अपन को प्राय प्रश्न सहा प्रभु पर मनोहारी परा निंदया, हाँ प्रश्न को सहन करना सीखो, उत्तर देना बाद में सीखो, पहले प्रश्न सहन करो, उसने क्यों पूछा, क्या कहाँ देखा होगा, कहाँ पढ़ा होगा, उसका क्या समाधान है। तो देखो जब अपन अपने अंदर भी अपने आश्रित बहुत सारी जीव राशि अपना जीवन यापन करती है, अनंत निगोदिया जीव अपने शरीर के आश्रित अपना जीवन चलाते हैं, अपन जो है अगर आहार इत्यादि नहीं ग्रहण करते हैं तो उन जीवों को बाधा तो पहुंचती है। अगर हमारा बाधा पहुंचाने का भाव होवे तो फिर वो दोष का कारण है, लेकिन हम अपने तपस्या कर रहे हैं, हम अपने आत्म सुख के लिए और शांतिपूर्वक समतापूर्वक अगर उपवास इत्यादि करते हैं तो उसमें कहीं कोई दोष नहीं लगेगा। इसी तरह केशलोचन की क्रिया करने पर भी कदाचित जीवों का विघात संभव है, लेकिन हमारे परिणाम चूंकि संक्लेशित नहीं है, हम तो अपने आत्म कल्याण के लिए तपस्या कर रहे हैं, इसलिए वह दोष हमें नहीं लगेगा। आपने जो प्रश्न किया वो इसी दृष्टि से कहीं लिखा होगा कि कोई उपवास इत्यादि करे, किस दृष्टि से करे कि जिसमें मेरे अंदर के सब जीव मर जावे और हम स्वयं भी धीरे धीरे उपवास करके, हमें जीना ही नहीं है, मर जाएंगे, सुखे भी को जे को उपवास करे थे और अच्छो रहो, तो ऐसे जीवन से निराश होकर के और उपवास करने वाले ने तो फिर आत्मघात ही किया, आप उसको क्या कहेंगे? 10-25-50 उपवास कर लिए आपने तो प्राण ही निकल जाएंगे, तो अपनी शक्ति से अधिक करेंगे तो फिर वो उसका कारण बन जाएगा। इस अपेक्षा से जो है किसी ने कहीं लिख दिया होगा, आपने प्रश्न तो पूछा, वाह होशियार, देखो आप होशियारी का ढंग। 8 तारीख को मेरा जन्मदिन है, देखना आप, तो मैं किस ढंग से मनाऊं कृपया बता दीजिएगा। हमने अब देखो होशियार है सब, धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं सब लोग होशियारी इनडायरेक्ट हैं। देखो जन्मदिन अपन को कैसे मनाना, हमने एक बार और कहा था अपन को भारतीय संस्कृति से मनाना, पाश्चात्य संस्कृति से नहीं मनाना। पाश्चात्य सभ्यता कहो, संस्कृति तो है नहीं, पाश्चात्य सभ्यता है। संस्कृति भारतीय संस्कृति में यह है कि हम अपने जीवन को निरंतर रोशन बनाएं, हम अपने जीवन में रोशनी करें और हमारे आसपास के जीवन में भी रोशनी हो, इसलिए हम लोग मोमबत्ती बुझाते नहीं हैं, दीप जलाते हैं। हाँ, और हम किसी के जीवन को काटते पीटते तकलीफ नहीं पहुंचाते, हम तो बनाते हैं। इसलिए ये जो केक और वो भी काटना शब्द, ये अपने यहाँ पर नहीं है। अपन तो अगर अलग अलग हो तो जोड़ने का काम करेंगे अपने जीवन में, इसलिए ये दोनों चीजें ना करके और अपने जीवन में उस दिन कोई ना कोई व्रत इत्यादि छोटा सा 9 बार नमोकार भी जीवन भर पढ़ने का नियम ले लिया कि रोज 9 बार नमोकार पढ़ेंगे, और नहीं है जीवन भर का तो साल भर का, अगले साल तक जब मेरा जन्मदिन आएगा तो मैं रोज याद करके अलग से 9 बार नमोकार पढ़ूंगा। इतना छोटा सा भी नियम ले लिया तो फिर वो दिन कौन सा हो गया, व्रतों का दिन हो गया। वो फिर श्रद्धा के साथ आपने व्रत लिया है तो वो आपके एक तरह से व्रतों की तिथि हो गई, जन्म तिथि नहीं। जन्म तो सबका यहाँ मिथ्यात के साथ होता है, तो मिथ्यात की क्या जन्म जयंती मनाना, मनाना हो तो व्रतों की और रत्नत्रय की सम्यक दर्शन की जयंती मनाना चाहिए, आचार्य महाराज का ऐसा कहना। तो अपन जो है चाहें तो अपने उस जन्मदिन को भी व्रत और संयम का दिन बना सकते हैं, ठाट बाट से पूजा करो, मुनिराज अगर आसपास हैं तो उनके लिए आहार इत्यादि दो और जो है दिन भर इसी तरह से अपना व्यतीत करो कि मेरा जीवन इतना व्यतीत हो गया, जो शेष रहा है उसमें मैं कुछ अच्छा काम करूं। अपने हाथ से उस दिन कोई ना कोई अच्छा काम भी कर सकते हैं, ऐसे मनाना चाहिए आनंद पूर्वक। अकेले जो है अच्छे कपड़ा पहन लो, अच्छो अच्छो भोजन कर लो, इससे क्या होने वाला, ये तो सब कोई कर लेते हैं, उसमें क्या। ट्रेन में भोजन करने में दोष तो नहीं लगता, ट्रेन में भोजन नहीं करेंगे तो क्या भूखे रहेंगे क्या देखो जितनी शुद्धि है उतना ही होएगी, उससे ज्यादा नहीं। त्यागी व्रति होएगा तो नहीं करेगा, सामान्य गृहस्थ होएगा तो करेगा। त्यागी व्रति के लिए पूछ रहे हो अगर कि ट्रेन में भोजन करेगा, नहीं त्यागी व्रति नहीं करेगा, ट्रेन में भोजन उतर करके और नीचे और नहा धो करके दर्शन करके करेगा। पोहा भक्ष है कि अभक्ष्य, इसे जैन परिवारों में बनाया जाना चाहिए कि नहीं, पोहा है ये
पोहा लिखा पोहा, जो भी आपकी भाषा में जो भी कहते हो, पर एक एक सही शब्द उसका पोहा भी है और दूसरी भाषा में भी आप जो कहते हो समझ सब गए। चावल को ऐसे चिपका करके बनाया जाता, वो वही है। वो उसके बनने की प्रक्रिया देख लोगे तो फिर बाद में न खाओगे। हाँ, वो इधर खूब देखने में मिल सकता, छत्तीसगढ़ में चले जाओ रायपुर साइड में, वहां पर सैकड़ों पोहा बनाने की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। उनमें सीधे वॉयलर लगे रहते हैं, वॉयलर जिनमें की वॉयल होते हैं, 10-10, 20-20, 25 बोरों को एक साथ जो धान है जिसको ना सोधा बीना जाता, ना कितनी लटे हैं, कितने कीड़े हैं, कोई मतलब नहीं, सीधे जाता है वो, ऊपर बोरा खुलता है और उसमें से पूरा बॉयलर में गरम खोलते हुए 80 डिग्री पर जो वाटर है उसमें वो डाल दिया जाता है और उसका टाइम फिक्स है कि इतने टाइम तक वो वॉयल होगा और वॉयल होने के बाद फिर प्रोसीजर होता और सीधे जाकर मशीन में हॉट जो गर्म रहती है उसमें ऐसे चिपक करके और बाहर निकलता है तो छिलका अलग हो जाता, पोहा अलग हो जाता, फिर उसको ड्राई कर लेते हैं, थोड़ा गीला रहता एक तरह से। अब बासा भात है, भात कई दिन का, एक तो हाँ भात और उसको जो है ऐसे चिपटा करके, अब लेकिन क्या करें, इस जिब्भा के मारे तो सब परेशान, कोई की नहीं चली इसके मारे। ये कहती है कि ये कुछ नहीं कहता, पेट पेट तो कहता कि भर गए सो शांति है, तुम तो डाल दो, लेकिन ये कहती कि ऐसे कैसे, जो जो अच्छा है टेस्टी है वो ही डालो, ऐसे कैसे डाल सकते। तो वो यहाँ पर बिल्कुल बैठी रहती हमेशा और अपन को समझा बुझा करके राजी कर लेती, वो अपना मन नहीं भी करे तब भी ये जिब्भा राजी कर लेती और अपन खा लेते सब जानते बूझते हुए भी। इसलिए अब आपको जैसा करना हो, इतना जरूर है कि जब तक मालूम न हो तो कम दूस लगता हो, मालूम हो जाओ फिर खाओ तो ज्यादा दूस लगता। अब हम नहीं जानते, अब आप जानो आपका काम। आप ही ने अपने हाथ से अपना उपद्रव किया। मैं रात्रि भोजन नहीं करता पर कभी कभी जो है लेट हो जाता हूँ, ऐसी स्थिति में दूध फल मूंगफली वगैरह लेता हूँ, तो ये अन्न के बराबर दोष तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, अन्न अलग चीज़ है और टेम्परेरी कभी जो है इस तरह की स्थिति बन जाए और उसमें अपन ने अपनी आकुलता से बचने के लिए कोई चीज़ ले ली है और वो अन्न की नहीं है, उसमें कमती दोष है। देखो भैया, अपने यहाँ पर आरंभ को ज़्यादा दोषयुक्त माना, दाल रोटी सब्जी बनाने में और इन सब में ज़्यादा आरंभ करना पड़ता और जरा सा भूख लगी, अब क्या करें, रात भर कटेगी नहीं, एक गिलास दूध उठाओ जल्दी से 5 मिनट में पी करके और निश्चिंत हो गए, पानी पी लिया, भैया बस इतनी मूंगफली रखी थी खाली, हो गया काम, चल जाएगा कल तक के लिए, क्योंकि शाम को भोजन नहीं कर पाए। अब रात भर थोड़ी ऐसी निकलेगी, संकलेश पूर्वक निकलेंगे, निकालें क्या? हाँ, अगर सहन शक्ति है तो सहन करो, ऐसा भी नहीं कि आपको ये कह रहे कि खाना ही चाहिए, नहीं, अगर सहन सकती है तो बहुत अच्छा है, सहन कर लो, दूसरे दिन के लिए कौन मर जाओगे, ऐसा विचार करके सहन कर लो, और अगर नहीं सहन होती, संकलेश होता है तो थोड़ा बहुत इस तरह से काम चलाने के लिए कभी कभार ले लेते हैं, तो इसमें कोई अन्न से तो कम ही दोष है, थाली लगा करके 12 बजे रात को, और खाने वालों की अपेक्षा तो अच्छा ही है, जहाँ पर मंदिर आदि नहीं होते वहाँ पर जाने का अवसर आ जाए तो ऐसी स्थिति में भोजन ग्रहण करें या नहीं। देखो, ऐसी स्थिति में एक तो वहाँ जाना नहीं चाहिए और अगर जाना भी पड़े तो फिर कोई चीज़ का त्याग वगैरह करके, नमोकार की जाप करके और रस का त्याग कर दिया, या कोई भी चीज़ भोजन में से कि आज मुझे दर्शन नहीं मिले हैं, इस तरह मन को कर सकते हैं। हम प्रतिदिन चाय पीते हैं, पीते थे, लेकिन जब से सुना कि उसमें मांसादी का उपयोग करने से तैयार होती तो उसी दिन से त्याग कर दिया, लेकिन कुछ दिनों से हमने काफ़ी पीना शुरू की है, उसमें दोष तो नहीं है। काफ़ी में जो है वो और कोई दोष तो नहीं है, जो काफ़ी की प्रोसेस है वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, अभी उसमें कहीं कोई और एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए या टेस्ट के लिए कुछ मिलाया जा रहा हो, ऐसा तो नहीं सुनने में आया? कलर, फ्लेवर और टेस्ट इन दोनों के लिए जो है वो चाय में तो मिलाया जाता है, ये जो है लोगों ने कंफर्म किया। और एमपी में तो जो है बहुत तेजी से 80% उनकी चाय की बिक्री ही बंद हो गई थी जब चाय के बारे में मालूम पड़ा तो। पर काफ़ी में ऐसा कुछ नहीं, पर काफ़ी में इतना ज़रूर है कि वो हार्मफुल है अपने शरीर के लिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल जिनको बढ़ता है, हार्ट डिजीज़ जिनको है, उनको संभल के पीना चाहिए। उसका सीधा बीज आता है वो तो और ज़्यादा, उसको तो प्रोसेस करके ये नेस्कैफे वाले बना करके पाउडर फॉर्म में देते हैं तो वो उतना हार्मफुल नहीं, पर 1.5% उसमें जो है कैफीन होती है, वो एक तरह का नशीला पदार्थ है। 0.75% होती है चाय में, एक प्याली चाय में, और 1.5 जस्ट डबल जो है वो काफ़ी में होती है। तो हफ्ते में एक आध बार कोई एज ए मेडिसिन, वो कुछ चीज़ों में एज ए मेडिसिन भी उपयोग में आती है, तो एज ए मेडिसिन ये दोनों चीज़ें एज ए मेडिसिन थी। जो इसकी लीफ जो है, चाय की लीफ, ये ठंडे प्रदेशों में जैसे अपने बच्चों को सर्दी हो जाती तो ब्रांडी पिला देते हैं एक चम्मच गर्मी के लिए, वैसे ही जो है इसका काढ़ा बना करके लीफ का और उसके कोको के बीज का, और ये काढ़ा बना के पिलाया जाता था एक चम्मच दवाई की तरह, जैसे काढ़ा पिलाते हैं दवाई में, पर वो बन गया पेय पदार्थ। तो उसको अपन जो है इतनी इतनी मात्रा में और गिलास भर भर के जो है चाय पीते हैं लोग, पता नहीं। तो इससे बचिएगा, अगर कभी कभार उपयोग करें तो अलग बात है, पर लगातार करेंगे तो आपके लिए तकलीफदायक होगी। जैन धर्म में अष्टमी चौदस का महत्व क्या है? अन्य तिथियों की अपेक्षा इनको क्यों महत्व माना गया है? क्यों कही गई है व्रत त्याग की? इसका क्या लॉजिक है? ये मैंने बताया था एक दो बार, पर आप शायद उस समय नहीं आए होंगे। अपने यहाँ पर अष्टमी को 8 कर्मों के नाश करने के लिए, ये घड़ी सुबह भी 10 मिनट आगे थी, 6 बजे इसमें 6:10 हो गया। तो मैं कह रहा था कि अष्टमी 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए, 14 गुण स्थान पाने के लिए चतुर्दशी, ऐसा लिखा है, और ये शाश्वत पर्व है। इसके पीछे अगर थोड़ा बहुत अपन साइंस देखना चाहें तो दिखता भी है कि जो भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट चंद्रमा के होते हैं वो पानी पर होते हैं, और हमारे अपने शरीर में 72% वाटर तो ऑलरेडी है। हम एक्स्ट्रा पानी और पिए और हरी सब्जियां खाएं तो और ज़्यादा पानी हमारे भीतर आ गया। वैसे ही नॉर्मल कोर्स में भी पानी है, उस पर चंद्रमा का प्रभाव तो पड़ता होगा। अष्टमी चतुर्दशी दोनों चंद्रमा से ही बनती हैं, चंद्रमा की कलाएँ खुलती जाती हैं तो पूर्णिमा आती है, बंद होती जाती तो अमावस्या आती है, उसके एक दिन पहले चतुर्दशी आती। तो अमावस्या और पूर्णिमा को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे, या तो एक्साइटमेंट होगा या कि डिप्रेशन होगा, दोनों ही चीज़ें। उसके पहले चतुर्दशी के दिन और व्रत नियम संयम रख लिए ताकि आने वाले दिन के इफेक्ट हमारे ऊपर कम हो जाए, शायद ये कारण रहा हो। मैं अपने मन से कह रहा हूँ, कहीं पर शास्त्र में नहीं लिखा है, नहीं तो आप कहें कि ये शास्त्र में लिखा हुआ है। आपको अच्छा लगे तो एक एक लॉजिक है ये। और दूसरा जो है, 7 दिन निकल गए हैं, 7 और बाकी हैं, बीच का दिन है, तो देखो चंद्रमा के असर कैसे होंगे, बिल्कुल नॉर्मल होंगे, ज़्यादा एक्साइट भी नहीं है, ज़्यादा डिप्रेशन भी नहीं है, तो दोनों स्थितियों में एक समान स्थिति होगी, तो उस दिन हम आसानी से धर्म कर सकते हैं। तो हमने अष्टमी का दिन शायद आचार्यों ने चुना हो, इस तरह अष्टमी चतुर्दशी दोनों शाश्वत पर्व हैं।
हमारे मुनि और आचार्यों के नाम के साथ सागर क्यों लिखा जाता है? पहले नहीं लिखा जाता था, कुंद कुंद स्वामी, समंतवद्र आचार्य, अकलंक देव, पुष्टन भूतबली आचार्य, इनमें नहीं लिखा जाता था। नंदी परंपरा चली, सेन परंपरा चली, जयसेन स्वामी, जिनसेन आचार्य, इस तरह से फिर बाद बात को आचार्य शांति सागर जी महाराज के समय में सागर शब्द जोड़ना शुरू हुआ, तो आज भी सभी साधुओं के साथ सागर शब्द जोड़ा जाता है। जिनके साथ सागर शब्द नहीं जोड़ा जाता उनमें कोई विशेषता नहीं है, ऐसा नहीं, और जिनके साथ जोड़ा जाता उन्हीं में विशेषता है, ऐसा भी नहीं। एक साधु में सागर के समान विशेषताएँ होनी चाहिए या होती हैं। समुद्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि उसके भीतर कचरा डाल दो कितना ही, वो विद इन मूवमेंट अपनी लहरों से उसे उठा करके किनारे पर फेंक देगा।
ये सबसे बड़ी समुद्र की, कोई और तालाब नदी की ये विशेषता नहीं, सिर्फ समुद्र की विशेषता है। कितना ही कचरा फेंक दो वो तुरंत झटक करके 5 मिनट के अंदर लहरों में बाहर डाल देगा। ठीक इसी तरह साधु के जीवन में पूर्व में बांधे गए कर्मों के उदय में और राग द्वेष परिणाम हो भी जाए अगर, तो वो अंतर मुहूर्त के भीतर भीतर उनको हटा करके चित्त को पुनः निर्मल कर लेता है। यही विशेषता साधु में, जैसे कि सागर का पार नहीं पा सकते उसकी थाह नहीं ले सकते, ऐसे ही साधु के जीवन में जो गुणवत्ता आती है उसकी थाह और उसका पार कोई नहीं पा सकता है। ये दूसरी विशेषता, सागर में कितनी नदियां जाकर के मिल जाएं लेकिन सागर कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। साधु के जीवन में कितने ही निंदा और प्रशंसा मिले लेकिन वो अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, अपनी मर्यादा में अर्थात अपने समता परिणाम बनाए रखता है। इसलिए सागर के समान उसकी विशेषता है। समुद्र में जैसे रत्नाकर कहा जाता है, रत्न पाए जाते हैं, इसी तरह एक साधु के जीवन में भी सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये 3 रत्न और भी विशेष गुण जो है पाए जाते हैं, इसलिए उस समान ही है। और समुद्र की एक विशेषता कह लो, चाहे खोट कह लो, उसके पास जाकर के किसी की प्यास बुझती नहीं है बल्कि और बढ़ जाती है। इसी तरह साधु के चरणों में जाने पर मोक्ष मार्ग की प्यास बुझती नहीं है और ज़्यादा बढ़ जाती कि मैं भी इनके जैसा कुछ थोड़ा बहुत तो करूं, ऐसा मन में लगन लग जाती। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो जो सागर में विशेषताएं हैं वो साधु के अंदर मिलती हैं, इसलिए लगाती। लेकिन मैंने पहले कह दिया कि जिनके साथ सागर शब्द नहीं मिला उनमें भी वे विशेषताएं पाई जाती हैं और जिनके साथ लगा हुआ उनमें भी वे विशेषताएं होनी चाहिए। 48वें काव्य की दूसरी पंक्ति में भक्त्या मया रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम, भक्त्या मया विविध वर्ण रुचित विचित्र पुष्पाम, इनमें कौन सा सही है? दोनों सही है भाई, रुचिर भी और विविध भी, अर्थ दोनों के एक ही हैं, दोनों पाठ जो है मिलते हैं। रुचिर वर्ण मतलब विविध वर्ण, नाना अनेक, रुचिर का मतलब भी अनेक है और विविध का अर्थ भी अनेक ही है। मैनी विद्यमान 20 तीर्थंकर के नाम और चिन्ह क्या क्या हैं? विद्यमान 20 तीर्थंकर के चिन्ह तो मुझे एक कहीं पर मिले थे पर मेरे पास जो आर्टिकल्स हैं उनमें वो अभी नहीं मिल रहे हैं। किसी ने और मेरे से कहा था वहाँ पर जब मैं जनकपुरी में था, मैं इसको मुझे मैंने कहीं देखे तो हैं तीर्थंकरों के विद्वान जो 20 तीर्थंकर विदेह क्षेत्र के, उनके नाम और उनके चिन्ह मिल गए थे। कुछ चिन्ह नहीं मिलते हैं, बाकी 20 में 17-18 चिन्ह मिल गए हैं, किसी ने खोज करके वो लेख लिखा था, वो मिल जाएगा तो बता पाऊंगा, वैसे तो नहीं मालूम। नौदा भक्ति से क्या तात्पर्य है? 9 प्रकार की जिसमें प्रक्रिया की जाती वो नौदा भक्ति है। प्रतिग्रहण, मुनि महाराज को आते देख करके और सबसे पहले भो स्वामिन अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ और उनको बहुत निकट से ग्रहण करना, ये पहली भक्ति है। फिर उनको उच्चासन देना, ये दूसरी भक्ति है। उनका पाद प्रक्षाल करके माथे पर गंधोदक लगाना, ये तीसरी भक्ति है। और फिर उनकी पूजन करना, ये चौथी भक्ति है। मन शुद्धि 5वीं, वचन शुद्धि 6वीं, काय शुद्धि 9वीं, आहार जल गलत हो गया 8वीं, 7वीं होना चाहिए है ना, 4 मन वचन काय की शुद्धि, ये 3 और जोड़ लो, 4 और 3 7 और फिर बाद में आहार जल शुद्ध है, ये 8 और नमोस्तु स्वामिन, ये हो गई नौदा भक्ति। इतना ही होना आवश्यक। जो चौके में हैं उनको पूरी नौदा भक्ति करना चाहिए, जो बाहर से आते हैं उनके लिए 5 प्रकार की भक्ति है, मन वचन काय की और आहार की शुद्धि और नमोस्तु, इतना ही है, इसी को नौदा भक्ति कहते हैं। और करें क्या, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ये और ये वाले, इसमें तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन, जल्दी जल्दी नहीं हो पाएंगे। ये क्या है, इन context to the eye donation after the death of a person, how much it is correct that after donation eyes the person would go as a blind in the next birth, should eye donation be appreciated, please comment। इन्होंने ये जानना चाहा है, किसी ने इनको ये कह दिया होगा कि अगर आप अपने मरण के समय आई डोनेशन कर देंगे, अगर किसी को आंख दे देंगे तो आपको अगले जीवन में आंख नहीं मिलेगी, ऐसा किसी ने इनसे कह दिया, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये सही है और इसके बारे में आपका क्या वो है। तो आचार्य महाराज से जब भी इसके बारे में पूछा जाता है तो आचार्य महाराज कहते हैं कि ये करुणा दान है, और इस करुणा दान का निषेध आचार्यों ने किया नहीं है, इससे पुण्य का ही बंध होता है। ये चूंकि परमार्थ का दान नहीं है इसलिए कर्मों की निद्रा तो नहीं होती, पर पुण्य का अर्जन होता है। और ये जो भ्रांति है कि हमने अपने आईज दूसरे को दे दिए मरण के समय तो हम अगले जन्म में ब्लाइंड होंगे या कि अंधे होंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ऐसा अवश्य है कि अगर दूसरे की आँख फोड़ने की भावना हो या अपने तो जरूर जो है अपने को अगले जीवन में अंधापन मिलेगा। अपन तो दूसरे की फूटी आँख को और दुरुस्त कर रहे हैं तो काय को उसके लिए अपने को अंधापन मिलेगा। इसलिए ये तो भ्रांति मन से निकाल देनी चाहिए। आज बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत मन बना के लोगों ने लिखे होंगे और मैं उनका जवाब दे नहीं पाया क्योंकि समय पूरा हो गया। ये सब रख लेते हैं, फिर अपन कल बैठेंगे। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। ये दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। बने औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।